तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस अंतिम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है कि लगातार 7 दिनों से हम भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और हृदय में दुख भी हो रहा है कि आज इस कथा का अंतिम सत्र है। आज इस परम पवित्र जगह को हमें छोड़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त सुख को प्रदान करने वाले हैं, समस्त रस को भोगने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम है, अपनी लीला के द्वारा अपने समस्त भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। वैसे संसार में सब लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए आए। केचिद आहु अजम जातम पुण्य श्लोके यकीर्तयः। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण यदुवंश की कीर्ति को बढ़ाने के लिए आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कृष्ण यहां पर आए ही नहीं क्योंकि वे अजन्मा है। कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार दूर करने के लिए इस जगत में आए हैं। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा इत्यादि समस्त देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण के अवतार का, कृष्ण के जन्म का अनेक अनेक कारण संसार के लोग अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताते हैं, परंतु कृष्ण का इस जगत में आने का वास्तविक कारण यदि कोई है तो वो है अपने भक्तों को सुखी करना, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने धाम से उतरकर इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने समस्त भक्तों को सौभाग्य प्रदान करते हैं। मन में प्रश्न हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आए, जितने भी भक्त उन दिनों इस संसार में थे सब लोग कृष्ण को देखकर प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, परंतु कृष्ण के चले जाने के बाद उनके भक्त कैसे आनंद उठा पाएंगे, कैसे आनंद ले पाएंगे। तब देवी कुंती कहती है कि भगवान श्री कृष्ण को देखने से, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने से जितना आनंद मिलता है उससे कोटि गुना ज्यादा आनंद भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनकर मिलता है। भगवत कथा आनंद प्रदान करने वाली है और इसी के साथ साथ भगवत प्रेम उत्पन्न करने वाली है। गत सत्र में यशोदा मैया दिवाली के दिन अपने सभी कार्यों को छोड़कर दही मथने के लिए बैठी है। सुखदेव गोस्वामी भागवत के दसम स्कंद के नवम अध्याय में प्रारंभ करते हैं। एकदा गृहदासिषु यशोदानंद घेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं ददी। एकदा दिवाली के दिन यशोदा ने गृह दासीषु अपने गृह में जितनी भी दासियां थी सभी दासियों को अलग अलग कामों में नियुक्त कर दिया और स्वयं कृष्ण के लिए दही मथने के लिए बैठी हैं, कृष्ण के लिए मक्खन बनाने के लिए बैठी हैं। इस श्लोक में स्वयं शब्द आया है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में स्वयं शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यशोदा मैया जीवन में प्रथम बार अपने हाथों से दही मथने के लिए बैठी है। जीवन में प्रथम बार आज तक यशोदा मैया ने अपने हाथों से दही नहीं मथा था, तो फिर आज यशोदा मैया दही मथने के लिए क्यों बैठी है? इसका एक कारण है। जब कृष्ण थोड़े बड़े हो गए, चलना सीख गए, तब गोकुल में उत्पात मचाने लगे। गोपियों के घर पर जाते थे, दही माखन की चोरी करते थे। एक दिन की बात, यह समस्त गोपियां आपस में मिलकर यशोदा मैया के पास आई शिकायत लेकर। यशोदा मैया को कहती हैं कि मैया, या तो आप इस गांव में रहो या तो हम लोग इस गांव में रहे, आप और हम साथ में इस गांव में नहीं रह सकते हैं। क्यों, क्या हुआ? बोले, आपका ये लाला हमारे नाक में दम करके रख दिया है। अरे, मेरे लाला ने क्या किया है? तो बहुत छोटा है, बेचारा ठीक से चल भी नहीं सकता है। बोले, मैया, आपको लगता है ये आपका लाला कृष्ण छोटा है, परंतु बहुत उत्पात मचा रहा है। बोले, क्या हुआ? वत्सान मुंचति क्वचित समये। हम लोग जब घर का काम करती होती है उस समय कृष्ण हमारे घर पर आता है और हमारा ध्यान नहीं रहने पर हमारे घर में घुसकर सभी बछड़े को छोड़ देता है और सारे बछड़े गाय के पास चले जाते हैं और गाय के थन का सारा दूध पी लेते हैं। बोले, अच्छा, ये मेरा लाला ऐसी हरकत कर रहा है? बोले, हाँ, बछड़े को छोड़ देता है। बोले, तब तो इसे डांटना चाहिए। बोले, मैया, हमने इसको डांटा, परंतु जब हम इसको डांटते हैं तो वो ऊपर से हमको डांटता है। हम कहती हैं कि हमारे बछड़े को क्यों छोड़ा, तब क्रोधित होकर गुस्से में आकर हमको डांटते हुए कहता है, मैंने मेरे बछड़े को छोड़ा है कि तुम्हारे बछड़े को छोड़ा है? तुम्हारा बछड़ा दूध पिएगा तो तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा कि मेरा बछड़ा? खामखा बेचारे बछड़े को मारती रहती हो, दूध पीने नहीं देती हो, देखती नहीं हो कितने सूखे पतले हो गए हैं? पता है ना, समाज में बछड़े को गाय के पास लेकर जाते हैं और गाय अपने बच्चे को देखकर वात्सल्य भाव से अपना सारा दूध थन में छोड़ देती है और बछड़ा उस दूध को थोड़ा सा पीता है, उनका मालिक फिर उसे खींचकर बाजू में रख देता है, दूध खुद ले लेते हैं और फिर कहते हैं हम लोग गाय के भक्त हैं। थोड़ा कम करो आवाज। हरे कृष्ण। कृष्ण ने कहा खामखा मारती रहती हो। बोले इतना ही नहीं मैया, जब हम हमारे बछड़े को बांधने जाती हैं, घर से निकलती हैं, तब ये हमारे घर में घुस जाता है और घर में घुसकर ये दही और मक्खन का मटका ढूंढता है और मटकी ढूंढकर उसे खा लेता है, चुरा लेता है। बोले अच्छा। बोले यशोदा मैया ने कहा तो आप इस मटके को अंधेरे कमरे में रखा करो ताकि उसे मिले नहीं। बोले मैया ये भी करके देखा, जब हम हमारे मटके को अंधेरे कमरे में रखते हैं तब आपने कृष्ण को बहुत सुंदर गले में कौस्तुभ मणि पहनाया है, पद्मराग मणि पहनाया है, ये उनके शरीर का तेज है, उनके मणि का प्रकाश कितने भी अंधेरे कमरे में आता है तो वो प्रकाशमान हो जाता है, कैसे भी करके ढूंढ लेता है। बोले अच्छा। बोले यदि ऐसा है तो आप अपने मटके को थोड़ा ऊपर बांधा करो। बोले ये भी करके देखा, जब हम हमारे मटके को ऊपर बांधती हैं तब उखल ढूंढता है और उसके ऊपर चढ़कर उस मटके को उतार लेता है। बोले इतना नहीं और ऊपर बांधो। बोले जब और ऊपर बांधती है तब लकड़ी ढूंढता है और लकड़ी लेकर बिल्कुल मटके के बीच में एक छोटा सा छिद्र करता है। ये लगता है छोटा है लेकिन बहुत बुद्धिमान है। बिल्कुल बीच में एक छोटा सा छिद्र करता है, छाछ और दही मक्खन गिरता है और ऐसे खड़ा रह जाता है, सीधा मुंह में आता है और पी लेता है। बोले छोटा सा बच्चा है, छोटा पेट है, ये कृष्ण दही और मक्खन खाता है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसके साथ पूरी टीम है, कितने सारे बच्चे हैं, और ये भी हमें तकलीफ नहीं है, परंतु वो बंदरों को साथ में लेकर आता है, मरकट साथ में होते हैं, उत्पात मचाते रहते हैं। बोले अच्छा, तब आपको अपने मटके को और ऊपर छत पर लगा देना चाहिए। बोले मैया ये भी करके देखा, जब हम हमारे मटके को और ऊपर रखती हैं तब नीचे 10 ग्वाले खड़े रहते हैं, उसके ऊपर 5 ग्वाले, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, 3 उसके ऊपर 2, और सब के ऊपर आपका ये लाला खड़ा रहता है और गिरा देता है, मटकी को उतार लेता है, फोड़ता है, खाते हैं, पीते हैं, बिगाड़ते हैं। मैया हम लोग थक गई हैं अब आपके लाला से, अब या तो आप गोकुल छोड़ो या हम गोकुल छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब ये रोज रोज नहीं चलेगा। तब यशोदा ने कहा एक काम करो, यदि कृष्ण आपके घर पर आकर मक्खन चुराता है तो आप मक्खन बनाओ ही मत, अपने घर पे मटकी रखो ही नहीं, घर पे माल होगा तो ये चुराएगा ना। बोले ये भी करके देखा, यह सोचकर कि कृष्ण आएगा चोरी कर लेगा, हम लोग दही मक्खन मटके में नहीं रखते हैं, और जब ये घर पर आता है उसे माल नहीं मिलता है तो गाली देता है, हमारे बच्चों को चिमटी काटता है, और इतना ही नहीं श्राप देता है, मेरे खाने के लिए इस घर में कुछ नहीं है, ये सब लोग भिखारी हो जाए, इसके पूरे कुल में दरिद्रता आ जाए, इसके सभी इसके पुत्र के इसकी 21 पीढ़ी दर दर भटक कर भीख मांगे। मैया क्या बताए, छोटा सा निर्दोष बालक यदि इसका श्राप अच्छा हो गया हमारे ऊपर लग गया तो हम सब लोग भिखारी हो जाएंगे, ये सोचकर हमें रखना पड़ता है। ये गोपियां बहुत शिकायत करती थी, हमारे संतों ने भक्तों ने इन सब शिकायतों को भजन में बहुत सुंदर गाया है। अरे गुजरात में एक संत ने बहुत सुंदर, घमर घमर मारू वलोणु गाजे श्याम, आवीने मारा मटका फोड़े, मटका फोड़े ने वालों छोरी यू करे श्याम, आवीने मारा मटका फोड़े। चार पांच गोवाल टोले वली ने, एक बीजा ने कांधे चढ़ी ने। चार पांच गोवाल टोले वली ने, एक बीजा ने कांधे चढ़ी ने। मटुकी मा मोरली मारे मारो कान श्याम, आवीने मारा मटका फोड़े। ओहो श्याम, आवीने मारा मटका फोड़े। अद्भुत भजन हमारे संतों ने, सुरदास जी, नरसिंह मेहता, अनेक भक्तों ने गाया है। वास्तव में शिकायत होती थी, और शिकायत सुनने में और शिकायत करने में जो आनंद था, वो आनंद वेदों की स्तुति में नहीं था। भक्तों, ऐसा नहीं है कि ये गोपियों को बहुत कष्ट होता था इसलिए गोपियां आती थी, नहीं, गोपियों को शिकायत करने में बहुत आनंद मिलता था। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण बहुत ठीक नहीं है। संसार में एक धर्म है, जैन धर्म। यह धर्म वालों का कहना है कि कृष्ण वर्तमान में नरक में है। हम पूछते हैं ऐसा क्यों, बोले उन्होंने चोरी बहुत किया ना, इसलिए वो नरक में चले गए। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण किसी के घर पर चोरी करे तो घर वालों को कष्ट हो, ये बात गलत है। और सब बात और सिद्धांत छोड़ दीजिए, आप अपने जीवन में सोचिए, आप कल घर पर जाकर मंदिर में भगवान के सामने पांच रोटी रखते हो और उनमें तीन रोटी खत्म हो गई, केवल दो बची, तो आप दुखी होंगे कि या सुखी होंगे? सुखी होंगे कि नहीं? भगवान ने रोटी खा ली, साक्षात भगवान आए और खा ली, सुखी होंगे। जब एक छोटी सी छवि और विग्रह रोटी खा लेते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति परब्रह्म सर्वाति सुंदर श्याम भगवान कृष्ण किसी के घर पर चलकर जाकर और चोरी करके जब खाते हैं तो क्या दुख होता होगा? कभी नहीं, बहुत आनंद होता था, हर्ष होता था। और यह शिकायत करने में भी अद्भुत आनंद होता था कि हे मैया, आप कान्हा को, कृष्ण को समझाओ। यशोदा मैया सोचने लगी कि हमारे घर में 9 लाख गाय है, नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, इस गांव में गिन चुनकर 5-7 गाय होगी है? एक नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, और प्रायः सभी गाय दूध देने वाली, और 9 लाख गाय का दूध कितना, दही कितना, मक्खन कितना, कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी कृष्ण दूसरों के घर पर जाकर चुरा कर खाते थे। यशोदा मैया अपने मन में सोचने लगी कि हमारे घर पर न तो मक्खन की कमी है, न दूध की, न दही की, किसी भी प्रकार की कमी नहीं। ये कृष्ण बाहर घर का मक्खन न खाकर बाहर क्यों खाते हैं? बहुत सोचे, बहुत बहुत सोचने के बाद यशोदा मैया को पता चला ये कृष्ण हमारे अपने घर का मक्खन न खाकर बाहर के घर का मक्खन क्यों खाता है? क्योंकि हमारे घर में ये मक्खन जो है मैं खुद नहीं बनाती हूं। यशोदा मैया स्वयं मक्खन नहीं बनाती थी, उनकी दासियां। बोले ये दासियां किस भाव में, क्या सोचकर मक्खन बनाती होगी? उनका भाव ठीक नहीं होगा इसलिए कृष्ण नहीं खाते हैं, इसलिए अब मैं मेरे हाथों से माखन बनाऊंगी। भक्तों, बात भी सत्य है, इस संसार में भगवान भोग के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। कुछ लोग बाहर से कुछ फरसान या कुछ भी लेकर आते हैं और भगवान के सामने रख देते हैं, कहते हैं प्रसाद, अरे प्रसाद तो हमें हमारे हाथों से शुद्ध भाव से और भगवान के लिए ही बनाना चाहिए। ऐसे नहीं बाहर से रेडीमेड कुछ भी लेकर आए और भगवान के सामने रख दे। क्या भगवान के पास खाने की भोजन की कमी हो गई है? वहां दुकाल और अकाल नहीं पड़ा है? भाव ग्रही जनार्दन, भक्तो भगवान भाव देखते हैं। हमें भाव से कृष्ण के लिए भोग बनाना, कृष्ण के लिए भोजन बनाना, कृष्ण को खिलाना और फिर जो बचता है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, ये बहुत बड़ी भक्ति है। भक्ति है। यशोदा मैया ने सोचा कि ये मेरी दासियां है, ठीक भाव से भोजन नहीं बनाती है। बात भी सत्य है, आप होटलों में जाते हो और वहां से कुछ भी लेकर आते हो और भगवान को भोग लगाओगे तो होटल वाले क्या सोचकर भोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। अब देखिए दो लोग, एक तो मां भोजन बनाती है, एक होटल वाला भोजन बनाता है। मां भी परोसती है, होटल वाले भी परोसते हैं, परंतु होटल वाला जब परोसता है तो यह सोचकर परोसता है कि मुझे पैसे मिलेंगे, और एक मां जब भोजन परोसती है अपने पुत्र को तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसमें मात्र प्रेम होता है, प्रेम छिपा है, प्रेम के कारण वो भोजन बनाती है। कृष्ण के लिए भोजन अपने हाथों से स्वयं पवित्र अवस्था से बनाना चाहिए। इसलिए आज यशोदा मैया स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाने के लिए, कृष्ण के लिए अपने हाथों से मक्खन बनाऊंगी। दिवाली का दिन था, बहुत सुंदर और नए वस्त्र पहन लिए। सुबह 3:30 बजे यशोदा मैया जग गई। यहां तो कुछ लोग 6 बजे, कुछ 7 बजे, कुछ 8 बजे सूर्य सिर पर आ जाता है तब जगते हैं। हालांकि हम भी यहां पर जल्दी नहीं जग पाए, खुद पालन नहीं किया और दूसरों को कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने इतना ठंड कभी देखा नहीं था, इसलिए हम भी थोड़ा लेट ही जगते थे। परंतु शास्त्र कहता है हमें सुबह जल्दी जग जाना चाहिए। एक रात मुनय प्रातर हुत हुताग्नय, प्रातः काल में जगकर, ब्रह्म मुहूर्त में जगकर, सुबह 3:30-4 बजे जगकर स्नान करके भगवान का नाम लेना, भगवान का दर्शन और फिर भगवत कार्य। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है ये प्रकृति के द्वारा एक उपहार है, एक भेंट है, गिफ्ट है। अब भगवान का नाम जपने के लिए बैठोगे तो हो सकता है आपका मन भगवान में न लगे, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय में स्वाभाविक भगवान के प्रति मन लग जाता है। सुबह 3:30 बजे जगकर यशोदा मैया सभी दासियों को अपने अपने अलग अलग कामों में लगा दिया और स्वयं बहुत बड़ा मटका लेकर, आज तो ग्राइंडर और मिक्सर आ गया है, पहले तो गांव में आप जानते हैं कि बहुत बड़ा मटका होता था, एक पिलर के साथ रखा जाता था, उसमें बड़ी मथनी होती थी और रस्सी के द्वारा खींचते हुए दही को मथा जाता था। यशोदा मैया दही को मथने के लिए बैठी है और दही को मथते मथते यानी यानी ही गीतानी तत्बाल चरितानी च। यशोदा मैया दही को मथते मथते कृष्ण के लिए कार्य कर रही है और कृष्ण के लिए घर का कार्य करते करते, देखो घर के काम करने चाहिए, ऐसा नहीं सब कुछ छोड़कर भक्त बन जाओ। आप जहां हो जैसे हो वहीं पर रहो, खेत के काम, घर के काम, जो भी काम है करो, लेकिन इसके साथ साथ भगवान का नाम लो। यशोदा मैया घर के कार्य कर रही है और साथ ही साथ भगवान का नाम ले रही है। और यशोदा मैया के हाथों में जो चूड़ी है, जैसे ही वह खींच रही है तो चूड़ी करताल का काम कर रही है, ताल दे रही है, और जो मथनी है घर घर हो रही है, वह मृदंग का काम कर रही है। चूड़ी करताल का काम, मथनी मृदंग का काम, और यशोदा मैया बहुत सुंदर भगवान का गीत गा रही है और उस समय यशोदा मैया बहुत सुंदर अपने मस्तक में, अपनी चोटी में मालती के फूल लगाकर बैठी थी। बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे, माताएं लगाते हैं। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया ये कार्य करने लगी, सारे फूल यशोदा जी के मस्तक से नीचे गिर गए। आचार्य गण लिखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ आध्यात्मिक होता है, सब कुछ चिन्मय होता है, वहां के फूल भी सोचते हैं। यशोदा मैया के मस्तक पर जो फूल थे वो बैठे बैठे सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? बोले, मैया यशोदा भगवान के लिए कार्य कर रही हैं और कार्य करते करते भगवान का नाम ले रही हैं। जो लोग अपने घर का काम करते हैं और घर का काम करते करते भगवान का नाम लेते हैं, उसके मस्तक में नहीं उसके चरणों में बैठना चाहिए। सारे फूल उनके चरणों में आकर गिर गए। जीवन के कार्य जो है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म के विषय में कहते हैं, तीन प्रकार के कर्म, कर्म अकर्म विकर्म। संसार में जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म बंधन में फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। वैसे ही ऑलरेडी हम लोग कर्म बंधन में बंधे हुए हैं और कर्म करके और कर्म के बंधन और बंधन लगते हैं। परंतु कार्य कर्म करते करते यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो पूर्व के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं और नया कोई बंधन हमें लगता नहीं है। इसलिए घर के काम करते करते भगवान का नाम लेना चाहिए। एक संत बहुत सुंदर गाते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम काहि विधि रहिए।
राम 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 सीता
गाइए सभी लोग। हरे राम 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 सीता राम राम राम,
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 हरे राम 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 सीता राम राम,
हरे राम राम
राम राम राम राम राम राम,
हरे राम 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 सीता राम राम राम।
यशोदा मैया अपने घर के कार्य कर रही हैं और भगवान का नाम जप रही हैं। वैसे संसार के कार्य करना बहुत कठिन है, परंतु भगवान का नाम लेते हुए यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह आसानी से समाप्त होते हैं। यशोदा मैया भगवान का नाम लेते हुए दही को मथकर मक्खन बना रही है। उस समय भगवान श्री कृष्ण बाजू में कक्ष में सो रहे थे। कृष्ण जग गए और जग कर चलते हुए यशोदा मैया के पास आए, उनके गोद में सो गए। गोद में लिए हुए यशोदा मैया कृष्ण के लिए मक्खन बना रही है। उस समय यशोदा मैया को याद आया कि मैंने कृष्ण को, सभी लोग शांति रखिए, आज अंतिम दिन है, फिर तो इसी प्रकार बातें करनी ही है सबको, और आप लोग शांति रख रहे हो ये भी बहुत बड़ी चीज है। इतनी सारी स्त्रियां हैं और फिर भी शांति है, नहीं तो एक बार अकबर के मन में हुआ कि आज जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मैं इनाम दूंगा। तो बहुत लोग आए, कहा कि राजन आज पानी में आग लगी। राजा ने कहा ये झूठ है, लेकिन इतना बड़ा झूठ नहीं है, इसमें दम नहीं है। तो किसी ने कहा राजन आज जो आम्रफल है वो जमीन से निकला। बोले ये झूठ है लेकिन बड़ा झूठ नहीं है। बोले राजन आज गंगा उल्टी बह रही है। बोले ये भी झूठ है परंतु बड़ा झूठ नहीं है। तब अंत में एक व्यक्ति आया, कहा राजन मैं रास्ते से जा रहा था, दो स्त्रियां बैठी थी और वहां शांति थी। बोले ये सबसे बड़ा झूठ है। राजा ने करोड़ों रुपये दे दिए। किसी को समझ में नहीं आया। राजा ने सोचा दो स्त्री बैठी हैं और 5 मिनट तक चुप हैं, बोले हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी यहां स्त्री नहीं है, यहां तो सब भक्त बैठे हैं इसलिए शांति है। लेकिन और थोड़ी शांति रखिए, फिर तो हमारे जाने के बाद आपको चर्चा करनी है। कैसी चर्चा करोगे, अच्छी करोगे या बुरी? हमारे पीछे प्रभु जी आए थे और बता रहे थे कुछ, ठीक थे नहीं थे? खैर, यशोदा मैया कृष्ण के लिए पद्मगंधा नाम की गाय का दूध चूल्हे पर गर्म करने के लिए रखा था। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय, उसमें 100 लाख गाय श्रेष्ठ थी और उस 100 गाय का दूध 10 गाय को पिलाया जाता था और 10 गाय का दूध 1 गाय को, और वह गाय का नाम पद्मगंधा, और वह गाय जब दूध देती थी तो दूध में से स्वाभाविक कमल की सुगंध आती थी। और वह पद्मगंधा गाय का दूध यशोदा मैया ने इन चूल्हे पर रखा था। और यहां पर यशोदा मैया कृष्ण को गोद में सुला रही हैं और कृष्ण यशोदा मैया के स्तन का दूध पान कर रहे हैं। उसी समय उस चूल्हे के ऊपर जो दूध था वह दूध बाहर आ गया, गर्म हो गया। आप सब जानते हैं ना, दूध का तो अनुभव नहीं लेकिन चाय का अनुभव तो होगा सबको है, गर्म होती है तो ऊपर आती है। दूध ऊपर आया और दूध बह गया, छलक गया। भक्तों आचार्यों ने बहुत सुंदर भाव लिखे हैं, आध्यात्मिक जगत का दूध भी सोचता है, वृंदावन में दूध भी सोचता है, विचार करता है। दूध ने क्या सोचा, बोले मैं इतनी घड़ी से तपस्या कर रहा हूं, जल रहा हूं अग्नि के ऊपर, इतने घंटों से मैं जल रहा हूं अग्नि के ऊपर तपस्या कर रहा हूं, यह सोचकर कि भगवान कृष्ण मुझे पिएंगे, भगवान कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाएंगे। परंतु अब कृष्ण अपनी मैया के हृदय स्तन का दूध पी रहे हैं, अब कृष्ण मुझे पिएंगे नहीं, अब ये मेरा जीवन कृष्ण के काम का नहीं, और जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कुछ काम का। जरूर जाओ उस जीवन जाओ की नाथ, जे जग में तुम रो बिनु भय, जान की नाथ भगवान राम और कृष्ण की सेवा में यदि ये जीवन नहीं है तो ये जीवन टिकाने से कोई फायदा नहीं है। ये सोचकर वह दूध बाहर आ गया, आत्महत्या कर लिया, आत्महत्या। बोले ये जीवन यदि भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है, भगवान की सेवा में नहीं काम में आ रहा है, तो ये जीवन क्या काम का है। सोचकर दूध निकला, लेकिन जैसे ही दूध उभरता है तो आवाज आती है छम करके, है यशोदा मैया को आवाज आई, पता चला दूध चला गया। यशोदा मैया सोची कि मेरे स्तन का दूध तो कृष्ण बाद में भी पी सकते हैं, परंतु वह चूल्हे वाला जो दूध है वह पूरा निकल जाएगा। यशोदा ने कृष्ण को छोड़ा, बाजू में रखा और स्वयं यशोदा दौड़कर उस चूल्हे के दूध को उठाकर नीचे रखा। और यहां कृष्ण क्रोधित हो गए। कृष्ण ने सोचा कि मैं इस यशोदा के लिए अपने धाम को छोड़कर आया, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति, लक्ष्मी सहस्त्र अनेक अनेक हजारों लक्ष्मी का नाथ, मेरा ऐश्वर्य छोड़कर सब कुछ छोड़कर यहां यशोदा के पास आया, बड़े बड़े योगी और ध्यानी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मैं इनको प्राप्त हुआ और ये 25 रुपया लीटर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई, इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, थोड़े से दूध के कारण यशोदा मैया मुझे छोड़कर चली गई। कृष्ण को क्रोध आया और उस समय कृष्ण ने एक पत्थर उठाया और उस जिस मटके में यशोदा मैया 3-4 घंटे से मेहनत कर रही थी उसी मटके को फोड़ दिया और सारा दही मक्खन सब बहने लगा और कृष्ण कहीं जाकर छिप गए। यशोदा आई, देखा ये उत्पात कृष्ण ने किया है, हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को ढूंढने लगी। कृष्ण गोकुल की गलियों में भागने लगे, यशोदा पीछे पीछे।
नमामीश्वरम सचि दानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले रजमानम यशोदा भियो लोक लाधव मानम परामृष्टमत्यंत ततो द्रुत्य गोप्या।
सत्यव्रत मुनि ने बहुत सुंदर इस दृश्य को अपने ग्रंथ में लिखा है और वेद व्यास जी ने इसको प्रकाशित किया। यशोदा भिय, भिया माने भय से, यशोदा के भय से भगवान श्री कृष्ण उखल से कूद गए और उखल से कूदकर कृष्ण दौड़ने लगे गोकुल की गलियों में। गोकुले ब्राजमानम, और दौड़ते हुए कृष्ण के कुंडल हिल रहे हैं, कृष्ण के बालों में से पसीना निकल रहा है। कृष्ण आगे आगे, यशोदा पीछे पीछे, ये दृश्य जो है अद्भुत दृश्य, भगवान के पीछे भक्त। कृष्ण ने बहुत दौड़ाया, यशोदा का शरीर बहुत तंदुरुस्त था, हेल्दी था, और कृष्ण छोटे छोटे पांव थे। यशोदा कृष्ण के पीछे दौड़ी, दौड़ दौड़ कर यशोदा को पसीना निकल गया, लेकिन कृष्ण हाथ में नहीं आया। भगवान ने देखा भक्त बहुत प्रयास कर रहा है, मेरी मैया मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं। अपनी मैया के प्रयास को देखकर भगवान श्री कृष्ण यशोदा के हाथ में आ गए। भक्तों, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास होना चाहिए। हम तो एक दो महीना भक्ति करते हैं और कहते हैं भगवान तो दिख ही नहीं रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। हमारे इतिहास में अनेक भक्तों ने मेहनत की है, प्रहलाद ने मेहनत की, ध्रुव ने मेहनत की, मीराबाई ने मेहनत की। मेहनत, बिना मेहनत के भगवान नहीं मिलते हैं। और मेहनत क्या करनी है? भगवत कथा सुनना, भगवान का नाम लेना, यही है मेहनत। यशोदा के प्रयास से कृष्ण हाथ में आ गए और यशोदा ने कृष्ण को उखल के साथ बांध दिया। बांध रही थी रस्सी के द्वारा, यशोदा बांधने गई तो दो उंगली और रस्सी कम पड़ी। दो उंगली क्या है? भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा से यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। सत्यव्रत जी कहते हैं कि कृष्ण उस उखल में बंधे हुए हैं और कह रहे हैं मैया अब मैं नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन आज मैया बहुत क्रोधित थी, कृष्ण को छोड़कर चली गई और कृष्ण उस उखल के साथ बंधे हैं और रो रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण अपने एक इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड को गिरा सकते हैं, जिस भगवान की एक छोटी सी माया शक्ति पूरे संसार के अनंत जीवों को बांध कर रखी है, उस भगवान को आज भक्त ने बांध दिया। भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, क्योंकि बांधा तो उससे जाता है जिसका आदि और अंत हो। इसका तो न आदि है न अंत है, ये तो अनादि अनंत है। कोई आज तक कोई बांध नहीं पाया, परंतु सत्यव्रत जी कहते हैं यशोदा ने कृष्ण को रस्सी के बंधन में नहीं बांधा है। कृष्ण रस्सी के बंधन में नहीं बंधे हैं, अरे मेरे कृष्ण तो प्रेम के बंधन में बंधे हैं। प्रेम के बंधन में, प्रेम से भगवान को बांधा जाता है भक्तों। इसलिए वास्तव में मैं कृष्ण को प्रणाम नहीं करता हूं, मैं यशोदा को भी प्रणाम नहीं करता हूं, कृष्ण और यशोदा के चरणों को भी प्रणाम नहीं, अरे मैं तो उस रस्सी को प्रणाम करता हूं जिस रस्सी के द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति आज बंधे हैं। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फूरदीप्ति दाम्ने त्वदीयोदया आथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो नन्तलीला देवाय तुभ्यम् इति द्विक्ष्वलीलाभि रानंद कुंडे। हे प्रभु, ये लीला निरंतर मेरे मन में स्मरण होती रहे, मेरे हृदय में ये लीला स्फुरित होती रहे, मैं बार बार आपके इस रूप का दर्शन करता रहूं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भक्तों का ये भाव है, भगवान आज बंधे हैं, परंतु बंधे हुए भगवान भी आज कृपामयी हुए हैं। अपनी कृपा से कृष्ण उस घर से बाहर निकले, कृष्ण आगे आगे चल रहे हैं, कृष्ण के साथ रस्सी बंधी है और पीछे पीछे उखल घसीटता हुआ आ रहा है। कृष्ण उखल को घसीटते हुए चल रहे हैं, इसलिए भक्तों ने कृष्ण का एक नाम रखा घसीटा राम। घसीटा राम नाम अच्छा है, किसी का रखना पड़ेगा। घसीटते हुए जा रहे हैं। और उस समय नंद बाबा के आंगन में दो बहुत बड़े वृक्ष थे, अर्जुन नाम के वृक्ष, दो जुड़वे वृक्ष थे, इसलिए उनका नाम हुआ यमलार्जुन। पूर्व जन्म में कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रेव शिव जी के कैलाश नामक धाम में मंदागिनी में वे अप्सराओं के साथ नग्न स्नान कर रहे थे। नारद मुनि आए, देखा कि भगवान के धाम में नग्न स्नान देखकर नारद मुनि ने श्राप दे दिया, आपको नग्न ही रहना है तो मनुष्य रहने की जरूरत नहीं, वृक्ष बन जाओ। और उन दोनों की प्रार्थना से नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया कि आप वृक्ष तो बनोगे परंतु नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनोगे और कृष्ण स्वयं अपने हाथों से आपका उद्धार करेंगे। नारद मुनि के वचन को पूर्ण करने के लिए कृष्ण को याद था। कृष्ण एक बार अपना वचन तोड़ देते हैं परंतु भक्तों का वचन नमे भक्त्या प्रणश्यति, भक्तों का वचन कभी तोड़ते नहीं है। कृष्ण उस दोनों वृक्ष के बीच में से निकल गए, रस्सी भी निकल गई परंतु वह उखल फंस गया। और कृष्ण थोड़े आगे बढ़े, वो लंबे लंबे बड़े बड़े वृक्ष धड़ाम करके पृथ्वी पर गिर गए और दोनों वृक्षों से बड़े बड़े देवता प्रकट हुए, भगवान को बहुत सुंदर स्तुति किए और भगवान के आशीर्वाद से भगवान के धाम में चले गए। इस प्रकार भगवान की अनेक अनेक लीला। इस लीला के बाद नंद बाबा और अन्य गोपों ने देखा कृष्ण के ऊपर अनेक विघ्न आ रहे हैं, अनेक आसुरी शक्ति का साया है। ये सोचकर सबने मंत्रणा करके सब लोग गोकुल से वृंदावन गए और वृंदावन में भगवान कृष्ण रहने लगे। और वृंदावन में आकर कृष्ण ने बछड़े को चराना प्रारंभ किया। रोज सुबह बछड़े चराने के लिए कृष्ण जाते थे, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया थी, छोटे छोटे ग्वाल और सब के साथ कृष्ण निकलते थे। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, उस बछड़े चराने के क्रम में कृष्ण ने अनेक असुरों का वध किया। वत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा और रोज घर से भोजन लेकर निकलते थे और सब लोग वहां वृंदावन में वन में भोजन करते थे। एक दिन की बात, कृष्ण अपने सभी गोप ग्वाल सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे। कृष्ण का भोजन भी अद्भुत, वे अपना जूठन किसी को खिलाते, मधुमंगल इत्यादि सखा अपना जूठन कृष्ण को खिलाते थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में सोचा कि मैंने सुना है कि भगवान का अवतार हुआ है, चलो जरा देख कर आऊं। ब्रह्मा देखने के लिए आए, ये सब लोग अपना जूठन कृष्ण को खिला रहे हैं, एक दूसरे को अपना अपना जूठन खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी आकर देखे, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं। जिस ब्रह्मा को भगवान ने इस संसार में सर्वप्रथम ज्ञान प्रदान किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उस आदि कवि सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा भी भगवान श्री कृष्ण की माया में मोहित हो गए भक्तों, तो हम सब किस खेत की मूली है? ब्रह्मा और शिव भी भगवान की माया से मुक्त नहीं है, सब लोग पहचान नहीं पाए, बोले ये भगवान हो नहीं सकते हैं। और यदि है, आज ही मैं हमारे गुरु महाराज के मुख से सुन रहा था, यदि है तो मैं परीक्षा करूंगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी उन सब ग्वाल वालों के बछड़े को चुरा कर ले लिए, सब लोग भोजन कर रहे थे, बोले बछड़े नहीं दिख रहे हैं। कृष्ण ने कहा आप सब लोग बैठो, मैं जरा देख कर आता हूं। कृष्ण गए तो ब्रह्मा जी सभी ग्वाल बालकों भी लेकर चले गए। कृष्ण ने आकर देखा, बछड़े भी नहीं, ग्वाल बाल सखा भी नहीं। कृष्ण ने मन में सोच लिया ये मेरे बच्चे का काम है, ब्रह्मा कृष्ण का बच्चा ही तो है, कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश से जन्म, हरेर अंशांश जन्म न, हरि के अंश के अंश से ब्रह्मा का जन्म। परंतु भगवान ने अपने योग माया के बल से अपने ही शरीर अपने अंश से जैसे ग्वाल बाल को ब्रह्मा जी लेकर गए, वैसे ग्वाल बाल को प्रकट किया, वैसी गैया को प्रकट किया और सब लोग घर पे चले गए। लेकिन अब की बार कृष्ण, अब की बार वो बच्चे वास्तव में बच्चे नहीं थे, वो तो कृष्ण के स्वरूप थे। इसलिए ब्रज में सभी माता पिता देख रहे हैं कि यार हमारा प्रेम हमारे बच्चों के प्रति क्यों बढ़ रहा है, ये बछड़ों के प्रति हमारा प्रेम क्यों बढ़ रहा है। कारण क्या था? कृष्ण ही बच्चे और बछड़े बने थे। तो इस प्रकार, और उस समय आपकी जानकारी के लिए कह दूं, कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण का विवाह राधा के साथ नहीं हुआ, वास्तव में कृष्ण का विवाह राधा और समस्त गोपियों के साथ हुआ। कैसे? उस समय पूर्णमासी जी आई और ब्रज में रहने वाले सभी माता पिताओं को कहा कि आप लोग अपनी अपनी कन्या का विवाह हमारे ब्रज में जितने भी ग्वाल हैं उनके साथ करा दो, ये बहुत अच्छा मुहूर्त और समय चल रहा है। तो सब लोग ने बचपन में ही अपनी अपनी कन्या का विवाह उस ब्रज के सखाओं के साथ कराया। वास्तव में वह सखा और कोई नहीं, कृष्ण ही तो थे, कृष्ण ही सभी अंशों के रूप में थे। वास्तव में ये समस्त गोपियों का विवाह कृष्ण के साथ हुआ है, श्रीमती राधा रानी का। इस प्रकार से कृष्ण तो रोज प्रतिदिन बछड़े और सखाओं को लेकर आते थे। ब्रह्मा ब्रह्मलोक से जब आए देखने के लिए तो वही बछड़े और वही सखा यहां पर है। ब्रह्मा को समझ में आ गया कि वास्तव में ये भगवान की माया है और इस माया से मैं मोहित हो गया हूं। ब्रह्मा जी से बहुत बड़ा अपराध हो गया और उस समय ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़कर, पहाड़ जैसे ब्रह्मा एक छोटे से कृष्ण के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, नो मीयते प्रभु पुषेत इडंबराय गुंजा वसन परिपिच्छ लसन मुखाय वन्यास्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्माश्रये मृदुपते पशुपंग जायः। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति की, हे प्रभु हे ईश्वर, इस संसार में कभी कभी एक छोटा सा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा कभी कभी अपनी माँ को ही लात से मार देता है, गोद में माँ रखती है, कभी कभी बच्चा अपनी माँ को लात मारता है, तो क्या माँ उस बच्चे को छोड़ देती है, पटक देती है? प्रभु वैसे ही हम सब आपकी आपके बच्चे हैं, कभी कभी हमसे भूल हो जाए, अपराध हो जाए, पाप हो जाए, तो आप हमें क्षमा कर दीजिए, आप हमें क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी बहुत सुंदर 20 श्लोक में स्तुति किए, परंतु कृष्ण ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। भक्तों ऐसा ही एक अपराध इंद्र ने किया था, सांबर तक मेघ बरसाकर पूरे ब्रज को बहा देना चाहता था इंद्र, और उस समय कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, और तब इंद्र को पता चला कि ये साक्षात कृष्ण है, भगवान है। उस समय इंद्र आए और कृष्ण को प्रणाम किए, स्तुति किए, और कृष्ण ने इंद्र को तुरंत क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी ने स्तुति की और इंद्र ने भी स्तुति की, दोनों ने अपराध किया था, परंतु इंद्र को क्षमा किया और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। कारण यह था, इंद्र ने अपराध करके सभी भक्तों को भगवान से मिलाया। सब भक्त ब्रज 84 कोष में अलग अलग जगह पर रहते थे, जब गिरिराज गोवर्धन धारण किया तो सारे भक्त कृष्ण से करीब आ गए। तो भक्तों को भगवान से मिलाया, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, परंतु ब्रह्मा ने भक्तों को भगवान से अलग किया। इस संसार में जो लोग भक्तों को भगवान से अलग करते हैं, भजन भक्ति में बाधा बनते हैं, उसको भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। ब्रह्मा को भी नहीं किए, तो मनुष्य की बात तो दूर रहे। इसलिए कभी हम लोग भक्ति न कर सके कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु दूसरों को भक्ति में बाधा नहीं देनी चाहिए। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे देश में यदि कोई भक्ति करना चाहता है, आप न करो, न कर सको, भगवान का नाम न ले सको, कंठी न पहन सको, तिलक न कर सको, कोई बात नहीं, परंतु जो कर रहे हैं ना उनको सहयोग देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और यदि नहीं किए, भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, उसी प्रकार हमें भी क्षमा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार भगवान की अनेक अनेक लीला हुई, धेनुकासुर का वध किया और भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग का उद्धार किया। तत्पश्चात भगवान प्रलंबासुर का वध किए। दावानल, भगवान एक बार गैया चराने के लिए वन में गए, दावाग्नि लग गई। दावाग्नि आप जानते हैं, सब लोग दावानल में फंस गए। उस समय भगवान सारी अग्नि को पी गए। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी भगवान की वेणु माधुरी का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण में एक विशेषता यह है कि वे बंसरी धारण करते हैं, अद्भुत बंसरी। और जब बंसरी बजती है, सुरदास जी लिखते हैं, बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी। ये नंद का पुत्र नंद नंदन जब बांसुरी बजाता है, सुन के धुन टूट गई। उस बांसुरी की धुन को सुनकर शिव जी अपनी समाधि भूल गए। ब्रह्मा वेद पढ़त भूल गए ब्रह्मा ब्रह्मचारी। ये ब्रह्मा के हाथ में 24 घंटा वेद होता है, वेद पढ़ते रहते हैं, परंतु भूल गए पढ़ना। बांसुरी का यह जादू है, बांसुरी का जादू। भगवान जब बंसरी बजाते हैं, यह प्रकृति पलट जाती है। कृष्ण की बांसुरी का नाद सुनकर भक्तों, ये जल जो है पत्थर बन जाता है, जड़ चैतन्य हो जाता है और चेतन वस्तु जड़ बन जाती है। हवा रुक जाती है, समय रुक जाता है, वातावरण स्तब्ध हो जाता है और पानी पत्थर बन जाता है। और पत्थर पानी की तरह पिघल जाता है। यह है भगवान की बंसरी, अद्भुत बंसरी। और कृष्ण ने अपनी लीला में दिखाया, कृष्ण सबके बिना रह सकते हैं, परंतु बंसरी के बिना कभी नहीं रह सकते। वे रात को सोते भी हैं तो बंसरी को साथ में लेकर सोते हैं। कभी रात को जग गए, बंसरी नहीं है तो नींद भी उड़ जाती है, रोने लगते हैं। बांसुरी से बहुत प्रेम है। और गोपियों को ईर्ष्या होती थी कि हम लोग कृष्ण के पीछे इतनी साधना कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, हम लोग कृष्ण से इतना प्रेम और इतनी सेवा कर रही हैं, परंतु हमसे ज्यादा लाभ तो ये बांसुरी ले रही है जो कृष्ण के अधर ओष्ठ होठ के ऊपर बैठी है। और कृष्ण अपने होठों का अधरामृत बांसुरी को प्रदान। गोपियों को ईर्ष्या होती है बांसुरी से, बांसुरी से ईर्ष्या करती है गोपियां। तब बांसुरी बोलती है, भागवत में बांसुरी बोलती है, बांसुरी कहते हैं, गोपियों मैं कृष्ण के इतने सुंदर आसन पर, उनके अधर ओष्ठ पे के ऊपर बैठी हूं, इसके पीछे तुम जानते हो कितनी मेहनत की है। बिना मेहनत के कृष्ण के होठों के ऊपर नहीं बैठा जा सकता है। सबसे पहले मैंने ठंडी को सहन किया, पहले मैं वृक्ष में थी, मेरे माता पिता के साथ वृक्ष में लगी हुई थी, ठंड को सहन किया, गर्मी को सहन किया, बारिश को सहन किया और फिर मुझे काटा गया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। और काटने के बाद मेरे शरीर में 12 छिद्र किए गए, मेरे शरीर में, मेरे शरीर को काटा गया, अग्नि में जलाया गया, अनेक अनेक प्रहार हुए, लेकिन फिर भी चुप रही। और तब जाकर आज कृष्ण के होठ के ऊपर बैठी हूं। और तुम सोचते हो ऐसे ही कृष्ण मिल जाए, मिल नहीं सकते हैं। प्रभु कहे सनातन कृष्णे रतन धन, अनेक जतन ते मिलाए, बहुत जतन करने पड़ते हैं। गोपियों को ईर्ष्या होती है और कभी कभी गोपियां कृष्ण के बांसुरी को चुरा लेती हैं, चुरा कर भाग जाती हैं। तब कृष्ण कहते हैं, राधे श्री विष्ण भानु दुलारी, बंसी दीजे मोए, मेरी बंसी मुझे वापस कर दो, बंसी बिना कैसे धेनु चराऊं। आप जानती नहीं हो, बिना बंसी के मुझे चैन नहीं आता है, बिना बंसी के मैं रह नहीं पाता हूं और बंसी के बिना मैं गाय चरा नहीं पाता हूं, मेरी बंसी मुझे दे दो। इस प्रकार से बंसी ढूंढते हैं। वेणु माधुरी का वर्णन। तत्पश्चात कृष्ण गोपियों के चीर चुराते हैं और गोपियों को वादा करते हैं कि मैं आपको शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला खेलने का सौभाग्य प्रदान करूंगा। शरद पूर्णिमा का दिन करीब आता है, समस्त गोपियां यमुना के तट पर पहुंचती हैं, अपने अपने पतियों को छोड़कर, अपने अपने बच्चों को छोड़कर, सास ससुर की सेवा को छोड़कर, दुनिया के सभी सर्वधर्मान परित्यज्य करके समस्त गोपियां कृष्ण के पास आई और सभी गोपियों के साथ कृष्ण ने रासलीला खेली। बहुत सुंदर रासलीला। वैसे सारी गोपियों को कृष्ण से मिलना था, परंतु गोपियों के पांव में जंजीर लगी होती थी। पीयू बसे पहाड़ में, मैं यमुना को तीर।